ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, श्लोक क्रमांक 38। शीत विशिख हतः विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतः आततायिनो मे प्रसभमभिसार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे। इसका पूरा भाव आना है तो अगला दूसरे तरीके से बोलना है। शीत विशीत हतो विशीर्ण दंशः शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससारमद्वधार्थम् प्रसभम् अभिससारमद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुतातायिनो मे प्रसभमभिससारमध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शीत विशिखः तो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभितसारमध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शितविशिखः तो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः माताजी शतविशिखः तो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमध्वधातम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शितविशिखः तो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमध्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शीत नोकिला विशिख बाण हतः घायल विशीर्ण दंशः छिन्न हुआ कवच क्षतज घावों से परिप्लुतः रक्त से सने आततायिनः महान आक्रमक मे मेरा प्रसभम क्रुद्ध मुद्रा में अभिससार चलने लगे मत वदार्थम मुझे मारने के लिए सह वह भवतु हो मैं मेरा भगवान भगवान गति ही लक्ष्य मुकुंदः मोक्षदाता। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे नोकीले बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान परम होने के कारण शत्रु वेश में भी अपने भक्त की सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है, यद्यपि उनके श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये कतिपय दिव्य आनंद आदान प्रदान के आचरण है भक्त तथा भगवान के मध्य। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्म देव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दैवी शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में न चाहे होते। यदि भीष्म देव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों की महिमा मंडित होते हैं, अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहां तो भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। ठीक विशिक हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम अभिससार मद्वधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो। युद्ध क्षेत्र में मेरे नोकीले बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया उनका कवच तितर बितर हो गया और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। ये बड़ा विरोधाभास दृश्य है। एक व्यक्ति मृत्यु के समय प्रार्थना कर रहा है कि जिस व्यक्ति को युद्ध भूमि में मैंने नोकीले बाणों से घायल किया, जो खून से लथपथ हो गया और क्रोधित होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था, वो मेरे परम गति हो। अगर परम गति हो तो फिर बाण क्यों चलाया भाई? उस व्यक्ति को लथपथ, खून से लथपथ क्यों किया? और अगर सही में शत्रु है तो परम गति क्यों, उसको स्मरण क्यों करते हो मरते समय? बहुत सारे प्रेमी हैं, बंधु बांधव हैं, उनको छोड़ के वो शत्रु को जिसके ऊपर आपने बाण चलाया उसका स्मरण कर रहे हो, बोले वो मेरे प्रभु। ये बहुत ही अजीब सा प्रार्थना है। और साधारण रूप से एक व्यक्ति इसे समझ नहीं पाएगा, बोलेगा ये जो प्रार्थना कर रहा है वो पागल व्यक्ति है, या जिसके प्रति कर रहा है वो पागल है। ये पागल क्यों है? क्योंकि एक तो उसको बाण से मार रहा है, उसको घायल करने को मारने की कोशिश कर रहा है, और मृत्यु के समय बोल रहा है वो मेरा, मैं उसका स्मरण करूं और वो मेरे परम गति हो, तो फिर कुछ गड़बड़ी है इधर। या अगर वो परम गति है तो वो भी क्यों क्रोध होकर आक्रमण करने आ रहा है? इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या है? ना उससे पहले एवं योवेति तत्वतः, जो व्यक्ति तत्वतः ये जान जाता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म यानी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य है, उसका परिणाम क्या है? त्यक्त्वा देहम, इस शरीर के छोड़ने पर पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से वो भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा। मामेति सोऽर्जुन, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। यद गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, और वो धाम कैसा है? जिस जगह को प्राप्त करने के बाद दुखालयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, इस दुखों का आलय और अशाश्वत जगत में फिर से आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और वो धाम का भी वर्णन है आठवें अध्याय में गीता के, कि किस प्रकार वहां जाने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है। तद्धाम परमं मम। तो अगर इतना ही सरल है, अगर आपको इस जन्म में ऐसा जीना है कि फिर से आपको इस भौतिक संसार में जन्म लेना नहीं है और भगवत धाम जाना है, तो आपको पांच शब्द समझ लेना चाहिए, पांच ही शब्द, जन्म कर्म च मे दिव्यम, बस। आप अगर ये पांच शब्द समझ लिए तो आपका जीवन सफल। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म, जन्म च कर्म च, दो चीज, भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्यम, दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या? जो भौतिक संसार के नियम से परे है। भौतिक संसार का नियम है हर एक व्यक्ति जन्म ले रहा है और हर एक व्यक्ति कर्म कर रहा है। हर एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, पर किस लिए जन्म लिए? पिछले जन्म का बुरा कर्म है महाराज, इसीलिए हम लोग जन्म लिए। हालांकि कोई जन्म लेता है तो हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, पर अगर सही में जानता कि क्या आने वाला है, किस तरह से जीना है, तो कोई नहीं कहेगा हैप्पी बर्थडे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसने जन्म लिया मृत्यु तो निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, बीमारी निश्चित है। तो हमारा जन्म जो है पिछले बुरे कर्म के लिए या थोड़े बहुत अच्छे कर्म बीच में उसका भी भुगतने के लिए एक शरीर प्राप्त हुआ है। और ये शरीर परिणाम पेशलम, ये शरीर भी ऐसा है सारे दुखों का कारण एक्चुअली शरीर और मन ही है। किसी का सरदर्द, किसी का पेट दर्द, किसी का ये, किसी का वो, किसी का एक्सीडेंट, और सब कुछ भी ठीक है तो मन ही मन होता तड़प रहा है बेचारा। सब कुछ है पर वो नहीं है, और वो मिल गया तो ये नहीं है, कुछ ना कुछ। तो इस तरह से हमारा जन्म पिछले बुरे कर्मों के फल से या अच्छे कर्मों से फल पे अच्छे जन्म, कुछ अच्छा जन्म क्यों ना हो पर तकलीफ होने वाली है, दुख आने वाला है। और कर्म, हम कर्म कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि हमारा बेसिक खाना पीना भी बिना कर्म किए नहीं होगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियत अकर्मण, चुपचाप अगर बैठे रहेंगे बोलेंगे नहीं, अपने आप अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो फल आएगा, मुंह में गिरेगा। मुंह में गिर भी गया फल, चबाना तो आपको है। शरीर यात्रा पिचते, सांस आपको तो लेना है, नाक है, हवा है, पर सांस अंदर लेने का प्रयास तो करना पड़ेगा। और अगर सांस लिया तो बहुत कृमि कीटाणु अंदर घुस गए, पाप लग गया, उनको मारने का पाप। कुछ खा रहे थे, पाप लग गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कृमि कीटाणु हैं। सांस नहीं ले तो भी तकलीफ, ले तो भी तकलीफ, नहीं खाया तो तकलीफ, खाया तो तकलीफ। तो जन्म कर्म च में भगवान, हमारा जन्म और हमारा कर्म जो है प्रकृति के नियमों के द्वारा हम ठेले जाते हैं इस भौतिक संसार में। चलो जन्म लेना ही पड़ेगा तुम्हें, चलो कर्म करना ही पड़ेगा तुम्हें, पापी पेट का सवाल है, करना ही पड़ेगा काम, चुपचाप बैठ नहीं सकते एक जगह। करोड़पति आदमी भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना उसको, है तो सही पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो चिंतित तो रहता ही हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति तीन गुणों के वश में जबरदस्ती जन्म लेते हैं और कर्म कर रहे हैं। पर भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण है, उनकी इच्छा से सब कुछ हो सकता है, उनको इस भौतिक संसार में जन्म लेने की क्या जरूरत है? एक करोड़पति आदमी, एक क्या बोलते हैं, ऐसा स्थान जहां गरीब लोग ऐसा रखते हैं, ऐसे झोपड़ी में क्यों जाना है, झोपड़पट्टी एरिया में क्या जरूरी है उसको, आराम से रह सकता है वो। तो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, वो सब छोड़कर यहां जन्म क्यों लिए? और उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सोचते हैं तो चीज हो जाता है। उपनिषद में वर्णन है कि उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उसको कुछ करना है ये जरूरत नहीं है। पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च, सिर्फ सोचे तो काम हो जाता है। God said, let there be light, and there was light. भगवान ने कहा प्रकाश होना चाहिए, सूरज आ गया. फिर सोचा और सामने आ गया. तो उनको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है. तो फिर वो जन्म क्यों ले रहे हैं इस भौतिक संसार में हम लोगों के बीच, और कर्म क्यों कर रहे हैं? ये चीज जो व्यक्ति जान गया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, तत्वतः जान गया कि भगवान जन्म क्यों लेते हैं और भगवान कर्म क्यों करते हैं. वो व्यक्ति त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोर्जुन, मेरे धाम को प्राप्त होता है. पर अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम. अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति लोग अवजानन्ति, मुझे नहीं समझ पाते हैं, मेरी निंदा करते हैं, कहते हैं कि वो ना वो भी वैसे हमारे जैसे ही उसको जन्म हो गया, वो भी हमारे जैसे ही कर्म कर रहा है. अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम, ऐसा लगता है उनका शरीर हमारे जैसा है. उनके भी दो आंख है, दो कान है, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है. उनके भी माता पिता हैं वसुदेव देव की, उन्होंने भी अपना ऑफिस शिफ्ट किया वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका. क्या करे, तकलीफ हो गया तो अपना बदलना पड़ा, उनको भी ट्रांसफर हो गया, उनका भी दो बार ट्रांसफर हुआ उनका भी गवर्नमेंट ऑफिस में. हमारा वही बार ट्रांसफर होता है तो भगवान का भी ट्रांसफर हुआ. बेचारे क्या करे, इधर कंस का डर था इसीलिए ट्रांसफर हुआ, और मथुरा में फिर जरासंध का डर था इसीलिए वो ट्रांसफर कर लिया, अपने आप को शिफ्ट कर दिया पूरा परिवार सहित द्वारका में. तो ऐसा लगता है अवजान दिमाग मूढ़ा मानुषीन तनुवाशतम, ऐसा लगता है कि मनुष्य के शरीर धारण किए. परम भावम अजानंत, मेरे परम भाव को नहीं जानते. मम भूत महेश्वरम, महाईश्वर सब चीजों के नियंत्रण करता वो है, उनको नियंत्रण करना कोई नहीं है. तीन गुण भी उनके नियंत्रण नहीं कर सकता. दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, दुनिया नहीं इससे परे भी कोई ऐसा चीज नहीं है जो उन पर कोई लागू हो सकता है. और फिर भगवान कहते हैं कौन व्यक्ति जान सकता है, कौन व्यक्ति जान सकता है उनको पूर्णतः तत्वतः एवं योवेति तत्वतः. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः. अगर तत्वतः भगवान को जानना है तो एक ही तरीका है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः. अगर तत्वतः भगवान को जानना है कि कौन है, उनका जन्म क्यों होता है, कैसा होता है, उनका कर्म क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो, ऐसा व्यक्ति समझ सकता है. और कौन, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या तु अनन्य या शक्य अहम वेदो, अहम वेदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परमतप. भक्त्या माम, केवल भक्ति से, भक्ति के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा वो जाना जाए. और भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. जब ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी, ऐसे तत्वदर्शी भक्तों के संपर्क में आते हैं और उनके मुखारविंद से श्रद्धापूर्वक तीव्रता से और नम्रता पूर्वक श्रवण करते हैं, प्रणिपातेन नम्रता पूर्वक कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं समझना चाहता हूं, और परिप्रश्नेन अगर कुछ संशय है तो उसको क्लियर करना, ऐसा कैसा, ऐसा क्यों किया भगवान ने, परिप्रश्नेन सेवया, और पूरा समझने के बाद जो समझा है उसको अपने जीवन में प्रामाणिकता से लागू करना. ऐसा व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को जान सकता है, इसके बिना वो जान नहीं सकता. और यहां तात्पर्य में आचार्यों ने भगवान के जन्म और कर्म का वर्णन किया है। ये स्थिति ऐसा है, प्रसंग ऐसा है, भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की रणभूमि हो चुका है, पांडव जीत गए हैं, विदुषिर महाराज साम्राज्य के अधिपति हैं, पूरे विश्व के साम्राज्य के भीष्म पितामह अब शरीर छोड़ने वाले हैं। जनवरी 14 के करीब आ गया है, संक्रांति के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अराउंड जनवरी 14 तो अभी शरीर छोड़ने वाले हैं भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु है उनको, जब चाहे छोड़ सकते हैं, पर उन्होंने चुना कि मैं भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूं। भगवान आए उनके समक्ष, बैठे हुए हैं और तब ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? क्या भीष्म पितामह पितामह थे? वो 100 साल से ज्यादा आयु के हैं। इस समय भगवान श्री कृष्ण ही 125 साल के थे, तो उनके पितामह मतलब उससे भी कई ज्यादा है उम्र के, गुरु श्रेष्ठ, इतने बूढ़े व्यक्ति और इतने बाणों से छल्ली जैसा मार दिए थे, दो बाणों के बीच में दो उंगली डालना जगह नहीं था, यहां से गले से लेकर पैर तक और लेटे हुए बाणों की शैया पर, तब तक शरीर नहीं छोड़े, हालांकि इतना दर्द था पर शरीर तब तक नहीं छोड़े जब तक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन नहीं हो, और उसको समझकर भगवान आए थे और दर्शन करते हुए अब वो क्या स्मरण कर रहे हैं। अभी शरीर छोड़ने के कुछ क्षण बाकी हैं और उस समय ये प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मोक्ष के दाता हैं वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हों। युद्ध क्षेत्र में मेरे नोकीले बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। उनका कवच तितर बितर हो गया था और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये प्रसंग क्यों भीष्म पितामह इस समय स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। महाजन मतलब जो भक्ति के तत्व को पूर्ण रूप से जानता है, ऐसे 12 महाजन बताए गए हैं भागवत में, उसमें एक है भीष्म पितामह, इतने महान भक्त हैं। पर सवाल उठता है कि वो पांडवों के पक्ष में क्यों नहीं लड़े, कौरवों के पक्ष में जाके क्यों लड़े वो, और भगवान के ऊपर तीर क्यों मारे अगर भक्त है तो? ऐसा कौन भक्त है जो भगवान को तीर मारेगा? हम तो भाई फूल चढ़ाते हैं उनको, आरती करते हैं, अगर सुबह सुबह मंगल आरती में आए धनुष बाण कोई लेके आए और संसार बावाच प्रार्थना करते हुए तीर चलाए भगवान के ऊपर, तो ये भक्त नहीं, ये तो असुर लोग करते हैं। रावण मारने की कोशिश कर रहा था, हिरण्याक्ष मारने की कोशिश कर रहा था भगवान को, हिरण्यकशिपु मारने की कोशिश कर रहा था, और यहां हम देख रहे हैं भीष्म पितामह भक्तों के श्रेष्ठ 12 महाजनों में एक, वो बाण चला रहे हैं, और ऐसा नहीं भेद रहे, कवच को भी तितर बितर कर दिए। भीष्म पितामह ऐसी ताकत थी, इसीलिए तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि अगर भीष्म हमारे पक्ष में है तो इन लोगों को तो ऐसे खत्म कर देंगे, आधे दिन में खत्म कर देंगे इनको, इनिंग्स डिफीट। अगर बहुत पावरफुल टीम एक जगह हो और दूसरे जगह एकदम ऐसे मामूली टीम हो, खेलो खेलो जैसा करना है करो, खत्म बस, इनिंग्स डिफीट। भीष्म को दुर्योधन को इतना विश्वास था, तुम लोग सब एक और भीष्म यहां है, काफी है, बस आधा दिन में तुम लोग सबको खत्म कर देंगे। और यह सत्य बात है कि भीष्म में ऐसी ताकत थी, परशुराम जैसे व्यक्ति जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पूरे पृथ्वी के चेहरे से हटा दिया था, पृथ्वी पर के इसमें से हटा दिया था उनको। 21 बार सारे क्षत्रिय राजाओं को ऐसे मार दिया, एकदम सामने टिक भी नहीं पाए, कौन सामने आ रहा है इससे जानने से पहले उसको खत्म कर देते। ऐसे परशुराम के साथ 18 दिन तक लड़ाई चलता रहा और दोनों ना जीते ना हारे, प्रैक्टिकली ऑन द लेवल ऑफ परशुराम। ऐसे व्यक्ति और पूरी ताकत से तीर चला रहे हैं वो, और अर्जुन पीछे बैठा है, भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, तो उनकी कवच पर लगता था और टूट जाता था कवच, तितर बितर हो गया था, और भगवान को भी बाण लगे, भगवान भी खून से लथपथ हो गए। कोई पूछ सकता है कि भगवान का खून निकलता है? प्रभु जी आपने तो कहा था कि भगवान का शरीर दिव्य है। हाँ, भगवान का शरीर दिव्य है, ये सही बात है। जैसा हमारा शरीर जो है वो भौतिक है, पर हमारा आत्मा जो है न तद भासयते सूर्यो, सॉरी और आत्मा कैसा है इसको, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र जो है छेद नहीं कर सकता, नैनम दहति पावकः, पानी इसको भिगा नहीं सकता, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, आग जला नहीं सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकता। तो हमारा आत्मा को किसी कोई मार नहीं सकता। अगर शरीर में एक एटम बम भी बांध दिया और विस्फोट भी हो गया और शरीर के एक एक टुकड़े टुकड़े भी हो गए, फिर भी आत्मा को कुछ नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा आत्मा का। अगर ऐसा है तो हम सुनते हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति बांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, आनंद चिन्मय सत सच्चिद आनंद विग्रहस्य। हमारा आत्मा सच्चिद आनंद है पर शरीर असत अचित और निरानंद है, इसीलिए इसका नाश होता है, पर आत्मा का नाश नहीं। पर भगवान का सर से लेकर पैर तक सच्चिद आनंद शरीर है, स्वरूप है। फिर मैं पहली बार, मुझे याद है कृष्ण भावना में जब पहली बार आया और मेरे को भागवतम मिला, दशम स्कंध देख रहा था, थोड़ा बहुत सुना था कि भगवान का शरीर दिव्य है, फिर मैंने देखा कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में बैठे हुए हैं और क्लीन शेवन, उनका बाल कटा हुआ है, लंबा शिखा है। तो सबसे पहला मेरे को प्रश्न आया, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद है, उनके बाल भी सच्चिदानंद है, तो काटा किसने सबसे पहले और वो कट कैसे गया? है कि नहीं? बाल अगर सच्चिदानंद तो काट नहीं सकते, कण कण भी सच्चिदानंद है भगवान का, शेविंग कैसे किया उन्होंने, किसने किया, कैसा किया, कौन से अस्त्र से किया, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पर कैसे किया? भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान कैसे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर हीटर में डाल दिया तो गर्मी पैदा होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया तो ठंडी हो जाता है। इसी तरह से भगवान सारे शक्ति के नियंत्रण करता है, आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक बना सकते हैं जब चाहे और भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं। कोई भी चीज को भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। ये माइक्रोफोन को ऐसा स्पर्श कर दिया तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसको कोई आग में लगा दो कुछ नहीं होगा इसको, तो इसको आध्यात्मिक बना सकते हैं। और अपना शरीर जो सच्चिदानंद है उसको बाहरी रूप से मूढ़ व्यक्तियों के लिए, अभक्त लोगों के लिए, उनको मोह में रखने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि मेरा शरीर देखो भाई, मेरे को भी खून निकल रहा है, बैंडेज ले आओ, मेरा भी बाल काट रहा है देखो। तो उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार दिखा सकते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो अपना एक शरीर छोड़कर अपने शरीर से भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो ये ज्ञान भीष्म पितामह को पूर्ण रूप से मालूम है, पर भीष्म पितामह एक भक्त है, परम भक्त है और दास्य भाव में है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ये कैसी सेवा भाई, तीर चलाकर उनको भेदना, वीर रस में उनकी सेवा करना चाहते हैं। पांच प्रमुख रस हैं और सात गौण रस, क्रोध रस, वीर रस, करुण रस इत्यादि, उसमें भी रस मिलता है हमको। क्यों, बच्चों को फाइटिंग सीन बहुत अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा वीर रस आता है। अगर सीधा भगवान आते और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े होते और खड़े होके एक लंबा सांस लेते और करते फूंक मारते, या फिर सांस ले लेते अंदर करके अंदर ले लेते और सारा कौरव सेना अंदर चला जाता, खत्म हो गया, पर मजा नहीं आता। थोड़ा महाभारत का कई सारे अध्याय खत्म हो जाते, फिर उसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कोई आता है और कहता है कि तुझे आज नरक में भेजूंगा, आज मृत्यु के द्वार दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मारते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप एक हिंदी फिल्म में जाएंगे जहां लड़ाई नहीं होता, हीरो आता है और ऐसा पीछे से उसको मार देता है ठक करके खत्म, तो बोला यार मजा नहीं आया, कुछ मसाला होना चाहिए। रस, हर एक व्यक्ति को रस चाहिए। वो एक हीरोइन है, एक हीरो, दोनों मिलते हैं और एक पेड़ के गुआ इधर उधर घूमते हैं, गाते हैं, तो थोड़ा आनंद रस। फिर करुण रस, वो विलन ले जाता है, रानी बेचारा रोता रहता है, फिर वीर रस, अभी मैं उसको वापस लाऊंगा। ये जो रस है, इस जो भौतिक संसार में हम आस्वादन करने का कोशिश कर रहे हैं, ये रस ऐसा है जो हमारी काम वासनाओं को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता, हमारी मोह को बढ़ाता है, शोक को बढ़ाता है। पर यही शुद्ध रस जब भगवान के साथ इसका आदान प्रदान होता है, रामायण क्या है, रामायण में भी वही है, सीताराम साथ में थे, रावण आ गया, उठा के ले गया, फिर से वापस उसको ले आए। पर इतना लंबा रामायण, 24,000 श्लोक के द्वारा उसका आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, करुण रस। प्रभु रामचंद्र कह रहे हैं कहां हो सीते, पेड़ से पूछ रहे हैं, हरेक टहनियों से पूछ रहे हैं, हरेक लताओं से पूछ रहे हैं। और बाद में जब वाली आता है और सुग्रीव उसको मदद करता है और हनुमान जी जाके लड़ाई करते हैं, तो हमारा भी एकदम रोंगटे खड़े, आनंद आता है। हर एक व्यक्ति रस की ढूंढ में है, जीव का स्वरूप है रस का आस्वादन करना, और कृष्ण है रसराज। ये एक रस, जब कृष्ण के संबंधित रसों का आस्वादन करते हैं तो वो रस भक्ति रस है, भक्ति रस अमृत। दूसरा रस जो है हमें मोह में और शोक में और काम वासनाओं को बढ़ाता है, पर ये रस जो है शुद्धि करता है हमको। तो भीष्म पितामह भक्त हैं, दास्य भाव में वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले, वो भी आपस में लड़ते, वो लोग हमेशा लड़ते रहते, ऐसे एक दूसरे को पटकना, आनंद है उनको, कुछ मजा आता है उसमें, तो वो रस है उसमें, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को गुस्सा करना, दोस्तों में भी कभी कभी होता है। चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या रस है उसमें, आदान प्रदान होना चाहिए वीर रस। सो ये वीर रस का आदान प्रदान करना चाहते थे और भगवान ने उस वीर रस का उन्हें आदान प्रदान किया। किस तरह से, बहुत सुंदर से इसमें वहां वर्णन है। वीर रस का तब आदान प्रदान होता है जब उसमें और ये बढ़े, रस बढ़े। अगर चुपचाप खड़े रहे और कोई मारता रहे और कुछ हिले ही नहीं, तो फिर रस नहीं आता उसमें, वो गुस्से से बोलता है अच्छा क्या मैं भी लूंगा, वो भी लेके फिर दोनों अगर गुस्से से लड़ रहे तो फिर उसका वीर रस का आनंद आता है, क्रोध रस। तो ये रस का आस्वादन तब चल रहा था, भीष्म पितामह वीर रस में है और भगवान अच्छी तरह से जानते थे, और इसीलिए उसका आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने जानबूझ के एक ऐसी परिस्थिति बनाई जब भीष्म पितामह को पूर्ण रूप से लड़ना पड़ा। तब तक भीष्म पितामह ठीक से नहीं लड़ रहे थे क्योंकि अर्जुन बहुत प्रिय था भीष्म पितामह को, तो मार ही नहीं रहे थे, वो ऐसे बस ऐसे चलाते थे, बस वो जाके इधर उधर गिरता था कहीं और ऐसा पार करके जाता था। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को भड़काया, बोले आप उनसे प्रेम करते हो, इसको राम के बहुत सारा उसने ऐसे उत्तेजित शब्द कहे भीष्म पितामह को, और एक क्षत्रिय को अगर तू नपुंसक है तुझे लड़ना नहीं आता है ऐसा बोल दे तो उससे बढ़कर इंसल्ट क्या बोलते हैं अपमान कोई नहीं है। अभी दुर्योधन ने वही किया, बोले मालूम है आप लड़ ही नहीं रहे हो, आप यही ताकत नहीं है, आप से प्रेम करते हो, एक कलंक है, इस पक्ष में क्यों आए, जाके उधर ही लड़ो। फिर भीष्म पितामह को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वचन लिया कल शाम तक पांचों के पांचों पांडवों को मैं मारूंगा। और भीष्म आपको मालूम है भीष्म वचन, उनका नाम भीष्म पड़ा देवव्रत से, क्योंकि एक बार जो वचन ले लिए कुछ भी हो जाए वो तोड़ते नहीं। तो भीष्म पितामह ने पांच तीर निकाले और ये पांच तीर दिखाकर बोले इन पांच तीरों से कल पांचों पांडव मर जाएंगे, कल सूर्यास्त तक पांचों पांडव चले जाएंगे। तो दुर्योधन खुश हो गया, पांचों तीरों को लिया, पितामह मेरे पास रहने दो, कोई रात को चोरी कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। मैं रखूंगा, कल सुबह आपको दूंगा, जैसे आप तैयार हो जाएंगे आपको हाथ में दूंगा, ठीक है। सब सूर्यास्त तो हो गया, सब लोग जाके अपने टेंट में सो गए, सिर्फ कृष्ण नहीं सोए, सिर्फ सो रहा करवट बदल रहे कृष्ण। अर्जुन आराम से लेटा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण सोच रहे ये तो सो गया पर मैं इसको इसका रक्षा करना है, अभी पांडवों का भक्तवत्सल हूं, मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा, भक्तवत्सल का नाम खराब हो जाएगा, तो सोच रहे हैं। फिर अर्जुन को उठाए, अर्जुन उठो, बोले क्या हो गया, बोले तुम्हें मालूम है क्या, बोले देखो तुम पांचों को मारने के लिए भीष्म पितामह ने वचन लिया। अर्जुन ने कहा कोई चिंता नहीं आप हो ना ठीक है। बोले ऐसा नहीं, जाओ, अर्जुन को भेजे, बोले जाओ उस दूसरे पक्ष में जाओ और दुर्योधन का जो तंबू है उसमें घुसो और ये पांच तीरों को ले आओ, और कैसा ले आओ वो भी बताए। और युधिष्ठिर महाराज गए और अर्जुन के साथ और बड़े अच्छी तरह से पांचों तीरों को ले आए, चोरी करके नहीं, प्रेम पूर्वक दुर्योधन ने दिया, उन्होंने याद दिलाया तुम्हें मालूम है दुर्योधन ने एक वचन दिया था, हाँ मालूम है, वो वचन अभी पूछो, जैसे कैकेयी ने पूछा था टाइम पे एकदम, बोले अब जाके पूछो। तो गए वो युधिष्ठिर महाराज गए अर्जुन के साथ और बोले दुर्योधन तुम्हें याद है तुमने एक वचन दिया था कि मेरी हमारी इच्छा पूर्ण करोगे। तुरंत दुर्योधन ने कहा हाँ मुझे मालूम है क्या चाहिए, तुमको पूरे हस्तिनापुर या पूरे विश्व का राज्य चाहिए बिना लड़ाई के, चलो मैं दान दे देता हूं तुम लोगों को। बोले ऐसा दान नहीं चाहिए तुम्हारा, बोले क्या चाहिए तुमको, मांगो कुछ भी देने के लिए तैयार हो, बोले वो पांच तीर हमको दे दो। दुर्योधन बोला ये लो पांच तीर, उसको क्या मालूम उसको भीष्म पितामह के बाद कई तीर हैं, तो पांच तीर दे दिया, ले गए। अगले दिन सब तैयारी हो गया, शंख बजने, सूर्योदय होने के लिए तैयार है, भीष्म एकदम कवच पहने और बोले दुर्योधन लाओ पांच तीर। बोले पांच तीर वो नहीं है अभी मेरे पास। बोले कहां गया, बोले वो कल युधिष्ठिर और अर्जुन आए थे ले गए वो। तुरंत भीष्म पितामह ने समझ लिया अच्छा ये तो एक ही व्यक्ति का काम हो सकता है, और कोई इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो भीष्म पितामह को वीर रस को मतलब एकदम जैसा कोई चुभा हो, बोले मैंने वचन लिया था कि इन पांच तीरों से मैं पांच पांडवों को मारूंगा, वचन दे दिया हूं मैं, और कृष्ण ने मेरा वचन तोड़ने के लिए अभी वो पांच तीर ले ली, तो भीष्म पितामह ने और एक वचन लिया। आज दो ही चीज होगा, मेरा वचन भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा है वो पांच तीरों को लेकर, या भगवान का वचन मैं तोड़ूंगा, भगवान के वचन को तोड़ने में मैं उनको जबरदस्त करूंगा, या फिर अर्जुन आज मर जाएगा, क्योंकि अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे कृष्ण, उन्हें मालूम है। तो आज या फिर कृष्ण अपने वचन को तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा वचन को तोड़ा है वीर रस में, वीर रस यही है, मेरा वचन को तोड़ा है, मैं भी उनके वचन को तोड़ के रखूंगा, देखता हूं कैसा नहीं और फिर नहीं तोड़े तो अर्जुन खत्म, देखता हूं कैसा रखते हो। और लड़ाई, उस दिन की लड़ाई महाभारत में वर्णन है कि ऐसा लड़ रहे थे भीष्म पितामह कि मानो आधा दिन में खत्म ही होने वाला है पूरा, कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। असली लड़ाई एक ही दिन की भीष्म पितामह, उस दिन मतलब सही उनका शक्ति जो है उस दिन उन्होंने अपना प्रदर्शित किया, और उनके सामने प्रैक्टिकली कोई नहीं टिक पा रहा था, मीलों के लंबी जो सेना थी उसको भेदते जा रहे थे, मानो एक चाकू जैसे एक मक्खन से काट के घुस जाता है एकदम, जहां घुसा वहां से एकदम गर्म चाकू, वो भी ऐसे वो पांडव सेना को भेद के घुस रहे थे, सीधा अर्जुन की ओर जा रहे थे, अर्जुन की ओर, और पहुंचते पहुंचते सब लोग कोशिश कर रहे हैं पर कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहा है, और पहुंचे अंत में भीष्म पितामह ने एक ऐसी स्थिति कर दी कि अर्जुन के आसपास कोई जिंदा नहीं रहा, सिर्फ अर्जुन ही बच गया, और भगवान रथ चला रहे हैं, रथ को ऐसे घुमा रहे हैं, भीष्म पितामह अगर एक बार निर्णय कर ले तो उनके सामने कौन टिकेगा, उन्होंने निश्चय किया कि अभी अर्जुन को मैं खत्म करूंगा, और मारने लगे, और 100% सबको समझ में आ गया कि और कुछ क्षणों में अर्जुन मरने वाला है, पर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिरमतिर मम। संजय ने शुरू होने से पहले ही कहा था कि जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है उनका भक्त, वहां निश्चय विजय होने वाला है, भगवान भक्त वत्सल है। बोले अर्जुन को कैसे ये मार रहा है, देखता हूं, मेरे होते हुए अर्जुन मारा जाएगा। तुरंत भगवान ने वचन लिया था महाभारत के युद्ध से पहले, भगवान ने वचन लिया था कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी शक्ति उपयोग नहीं करूंगा दूसरे पक्ष के प्रति, मेरी शक्ति उपयोग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा बस। जिधर बोला रथम स्थापने अच्युता, ओके ठीक है, यस सर। तो ये जब जा रहे थे तब उसको समझ में आ गया, अगर मैं अभी बीच में आया नहीं तो अर्जुन खत्म हो जाएगा। तो तुरंत भगवान, और ये स्मरण कर रहे हैं भीष्म पितामह उस दृष्टि को पिछले श्लोकों में स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आपके घोड़ों के पैरों से धूल निकला हुआ, पूरा शरीर से ढका हुआ और खून से लथपथ हुआ, और बाल जो है बिखरे हुए, और आपका उतरिया जो है उड़ गया था, और आपने एक छलांग मारकर, भगवान ने एक छलांग मारा रथ से, और बगल में एक रथ टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसके रथ के चक्र को हाथ में लिया, पहिए को, और पूरा फोर्स के साथ मानो कोई शेर हाथी को मारने जा रहा हो ऐसे वो भीष्म पितामह की ओर बढ़ने लगे। भीष्म पितामह खुश हो गए, बहुत हो गया ना, बस मैं खुश हूं, मेरा तुमने वचन तोड़ा, मैंने तुम्हारा तोड़ा। फिर उन्होंने धनुष बाण फेंक दिया और ऐसे खड़े हो गए, बोले आ जाओ मारो अभी भेदो, यही तो मेरा जीवन की सफलता है, आप सुदर्शन नहीं तो पहिया, रथ का पहिया चलेगा, रथांग पाणे, बोले मारिए आप। वो भूल गए, अर्जुन को मारना भूल गए, बोले बस मेरा काम हो गया। भगवान पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भक्त वत्सल अपने भक्त को बचाने के लिए अपने वचन भी तोड़ने के लिए तैयार है, अपना नाम बर्बाद हो गया और वो चलेगा, पर भक्तों की रक्षा मैं करके रहूंगा। एक्चुअली इस रस का कृष्ण और अर्जुन के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है, उस प्रेम को देखकर दुर्योधन भीष्म पितामह उसका आस्वादन कर रहे हैं। क्या प्रेम है भगवान भक्त के प्रति कि अपने वचन को भी तोड़ने के लिए तैयार है और मेरी ओर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। हे प्रभु हरि बोल, आओ आओ मारो। तो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के पक्ष में है, पर एक्चुअली ये सारा जो ड्रामा चला भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए था। क्यों? क्योंकि भीष्म ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन दे दिया था और कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच रासलीला हो रहा था। प्रेममय रस का वीर्य रस में आदान प्रदान हो रहा था। तो एक्चुअली एक भक्त इस श्लोकों में भी उतना ही आस्वादन कर सकता है भगवान के प्रेम का, भगवान की भक्तवत्सलता का, जितना रासलीला में। कोई मूर्ख लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब मेरे को नहीं पढ़ना, प्रथम स्कंद दूसरी स्कंद, हमको सीधा दशम स्कंद में जाना है और वहां का रासलीला पढ़ना है। वो रासलीला जो है अपनी काम वासना को बढ़ाएगी ऐसे। पर जब तक भगवान को तत्वतः नहीं जानेंगे, उनके हरेक आदान प्रदान रसमय है, चाहे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हो या वृंदावन के रासस्थली में क्यों ना हो। अलग अलग रस हैं, वहां माधुर्य रस है, यहां वीर्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य रस है, पर रसों का आस्वादन हो रहा है। और ये जब जान जाएंगे तो इसका पूरा आस्वादन कर सकते कि भगवान इनको कौन मार सकता है। और अगर भगवान सही में भीष्म पिता को मारना चाहे तो बिना हिले खड़े खड़े, अरे महाविष्णु एक सांस लेते तो पूरा ब्रह्मांड अंदर घुस जाता है। तो एक व्यक्ति को मारना कौन सा बड़ी बात है, पर भगवान ये सब वीर्य रस को बढ़ाने के लिए, भीष्म पितामह के वीर्य रस को आनंद देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए इतना बड़ा ये सब नाटक कर रहे हैं। और आज जब शरीर छोड़ रहे हैं तो भीष्म पितामह उसी चीज का स्मरण कर रहे हैं। और इस तरह से भगवान की ये कार्यकलाप क्यों करते हैं, जब तक हम परंपरागत तत्वतर्शिनः भक्तों के द्वारा श्रवण नहीं करते और उस दृष्टिकोण से नहीं देखते, तब तक भगवान को एक मामूली व्यक्ति समझेंगे या भगवान को एक अनैतिक व्यक्ति समझेंगे। और नहीं समझने के कारण नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, शरण नहीं जाएंगे बल्कि अपराध कर बैठेंगे। भगवान को एक मामूली व्यक्ति समझेंगे अज्ञान पूर्वक, या कोई मामूली व्यक्ति को भगवान समझ बैठेंगे। तो इसलिए यहां भीष्म पितामह का जो भाव है, भावना है, और अंत में कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं, भीष्मदेव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान के इस स्वरूप को। हाँ? तो अगर भगवान हमारे सामने आए तो हम नहीं जान पाएंगे उनको अभी, पर अगर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, अगर भक्ति से भरा हो हमारा हृदय में, तो भगवान के स्वरूप को हम एक्चुअली देख पाएंगे और भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान होगा। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग में भगवान की कृपा से वो नाम के रूप में अवतरित है। पर अगर हम नाम को भी मामूली समझेंगे, एक मामूली साउंड वाइब्रेशन समझेंगे, तो अवजानंती नहीं समझ पाएंगे, अपराध कर बैठेंगे। पर भक्ति भाव से अगर आकर आस्वादन करेंगे उसका, तो उस नाम में भी, नाम चिंतामणि अभिन्नत्वा नाम नामिन, उस नाम के द्वारा भी ये रस का आस्वादन, हरिनामामृत रस का आस्वादन हो सकता है धीरे धीरे। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, क्रमशः वो आस्वादन होगा। तो इस तरह से हरेक स्कंद में, हरेक अध्याय में भगवान के और भक्तों के प्रति जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उसका यहां बहुत अच्छे तरह से वर्णन है। और इसको जब हम समझेंगे नियमित रूप से, हर रोज श्रवण करेंगे, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, निष्ठा बढ़ेगी। अभी अनिष्ठित भक्ति है हमारी, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि अनर्थ है। ततो अनर्थ निवृत्ति स्या तथा निष्ठा, अनर्थ होने के कारण कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, पर अनर्थ निकल जाएगी तो निष्ठा, निष्ठा मतलब हर अवस्था में वो आस्वादन करते रहेंगे और तब समझ पाएंगे कि शत्रु के रूप में भी, जैसे वृत्रासुर, वृत्रासुर भगवान का शत्रु था और इंद्र भगवान का भक्त है, पर भागवत में हम देखते हैं कि वृत्रासुर भगवान का शुद्ध भक्त है और इंद्र जो है भगवान का कर्म मिश्र भक्त है। तो यह आदान प्रदान हम नहीं समझ पाएंगे जब तक भक्ति भाव से, भक्ति प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना, उस आंखों से नहीं देखेंगे, तब हम देखेंगे कि भगवान चाहे वहां शत्रु हो और यहां मित्र हो, मित्र को कम देकर शत्रु को ज्यादा कृपा दे सकते हैं। और यह सत्य बात है कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जितने सारे लोग मारे गए भगवान के आंखों के सामने, सबको भगवत धाम में उनका मूल स्वरूप प्राप्त हुआ। तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्रपूतम पदम आपुरस्य। उद्धव कहते हैं तथैव च अन्ये नरलोक वीरा, जितने सारे नरलोक वीर, जितने सारे राजा सेना लोग, चाहे वो पांडव सेना हो कौरव सेना हो, शत्रु के रूप में खड़े थे भगवान के विरुद्ध, ये आहवे, आहवे मतलब रणभूमि में कृष्ण मुखारविंदम, कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए नेत्रे पिबंतो, अपने नयनों से भगवान के मुखारविंद की सुंदरता को पी रहे थे, वो रस का आस्वादन कर रहे थे, नयनाभिरामम, और जब देख रहे थे, आस्वादन कर रहे थे, पार्थास्त्र पूतम, तो अर्जुन ने तीर चलाया, भगवान को देखते देखते बाण लगी, मर गए, और मरते वक्त भगवान के मुखारविंद का आस्वादन कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे, एप्रिशिएशन, और वो भावना होने के कारण पूतम, जो थोड़ी बहुत बुरा कर्म था वो सर्जरी के द्वारा अर्जुन ने तीर से निकल गया, तो बाकी जो बचा वो भगवान के प्रति गुणगान अप्रिशिएशन था, और इसीलिए पदमा पुरस्य, परम पद भगवान के चरण कमल भगवत धाम को प्राप्त किया। हर एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, चाहे कौरव हो पांडव हो, जितने लोग थे सबको भगवत धाम प्राप्त हुआ, क्यों? भगवान के वहां मौजूदी से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपात सिर्फ अर्जुन के प्रति या पांडवों के प्रति कर रहे थे, भगवान का आदान प्रदान सबके प्रति एक ही तरह होता है, पर आपकी इच्छा कैसी है वैसे आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हम ये दृष्टिकोण से जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार से पूर्ण रूप से दिव्य है, और तब हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्ण।